समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार सुप्रभात श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के विशेष समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आज आपके साथ मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं नीना अरेकल। श्रोताओं, आज बसंत पंचमी का त्योहार है। भारत में पूरे साल को जिन 6 ऋतुओं में बांटा जाता है उनमें बसंत लोगों का सर्वाधिक प्रिय मौसम है। बसंत के आगमन से फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों का फूल मानो सोने सा चमकने लगता है। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। अमराइयों में मंजार यानी बोर आने लगते हैं और चहुओं रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। भंवरे अपनी मधुर गुनगुन से पूरे वातावरण में अमृत ध्वनि सी खोलने लगते हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने की 5वें दिन को बसंत पंचमी को विद्या की देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और कामदेव की विशेष पूजा के साथ मनाया जाता है। रंग बिरंगी खिली अधखिली, किसिम किसिम की गंधों स्वादों वाली ये मंजरियां, तरुण आम की डाल डाल टहनी टहनी पर झूम रही हैं, चूम रही हैं। कुसुमाकर को ऋतुओं के राजा धीराज को, इनकी इठलाहट अर्पित है छुई मुई की लोच लाज को। तरुण आम की ये मंजरियां, उद्भित जग की ये किन्नरियां, अपने ही कोमल कच्चे व्रंतों की मनहर संधि भंगिमा, अनुपल इनमें भरती जाती ललित लास्य की लोल लहरियां। तरुण आम की ये मंजरियां, रंग बिरंगी खिली अधखिली। बसंत पंचमी पर जनकवि नागार्जुन की ये पंक्तियां हमेशा मानस के मन के भीतर उमंग और उत्साह का संचार करती रहेंगी।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम मुकेश। वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल आर लिसनर्स टू ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। मुकेश, ऑन दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑफ बसंत पंचमी, लेट अस वेलकम स्प्रिंग विद होप एंड हैप्पीनेस एंड सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ सरस्वती फॉर विजडम, क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी इन लाइफ। सो विद डिवोशन इन आर हार्ट्स एंड फ्रेशनेस ऑल अराउंड, let's begin today's special edition of Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 23rd of January.
बिल्कुल, श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ब्यौरा सुनते हैं हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 यात्री रेलगाड़ी शामिल है। प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में CSIR NIIST नवाचार प्रौद्योगिकी और उद्यमिता केंद्र का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में नए पुज्जुपुरा मुख्य डाक घर का भी उद्घाटन करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
Government has notified 33 questions that will be put to citizens during the first phase of the census starting April 1. The first phase of census 2027 house listing operations will take place during a 30-day period specified by each state and union territory between April 1 and September 30 this year. The enumerators will ask about the ownership status of the house, its use, the type of material used in flooring and roof, the number of rooms and the sex of the head of the household during the survey.
आज जयंती है महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जिनके पांव लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। सुभाष ने इंग्लैंड में जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की। वे चाहते तो उच्च पद पर आसीन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना। बोस ने नौकरी से अपनी त्याग पत्र दिया। सारा देश इस घटना से हैरान रह गया। उन्हें समझाते हुए कहा गया कि तुम जानते भी हो, तुम लाखों भारतीयों के सरताज होंगे, तुम्हारे हजारों देशवासी तुम्हें नमन करेंगे। तब इस पर सुभाष ने कहा, मैं लोगों पर नहीं उनके मनों पर राज करना चाहता हूँ, उनका हृदय सम्राट बनना चाहता हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए बार बार जनमत को एक करने के प्रयास किए। आइए सुनते हैं उनका ये संवाद।
हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रख सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा।
उनकी जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय आज से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस का आयोजन कर रहा है। नेताजी के जीवन और विरासत से जुड़े देश भर के 13 अन्य स्थानों पर भी ये उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव उनके साहस, बलिदान और देशभक्ति की अमर विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मंत्रालय ने बताया है कि इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक प्रस्तुति शामिल होगी। इसके अलावा आगंतुकों को द्वीपीय व्यंजनों के समृद्ध मिश्रण का अनुभव करने और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पारंपरिक हस्तशिल्प का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। ये उत्सव रविवार तक चलेगा।
The Pradhan Mantri Sangrahalaya has inaugurated an exhibition highlighting the strategic importance of INS Vikrant, India's first indigenously built aircraft carrier. The exhibition highlights INS Vikrant's role in strengthening the nation's defense capabilities and maritime security. Former Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, inaugurated the exhibition in the presence of Ashwani Lohani, Director, Prime Minister's Museum and Library. A report.
INS Vikrant represents a historic milestone as the first aircraft carrier made in India. It symbolizes the country's progress towards self-reliance in defense manufacturing under the vision of Atmanirbhar Bharat. Built with approximately 76% indigenous content, the carrier reflects India's growing technological and industrial capability in complex defense platforms. Strategically located within the Pradhan Mantri Sangrahalaya, the display of the scale model of INS Vikrant offers the visitors contextual insight into the historical, strategic and symbolic importance safeguarding India's national interest and enhancing defense preparedness. Speaking at the inaugural ceremony, Admiral R. Hari Kumar said that INS Vikrant marks India's entry into a select group of 9 countries globally capable of building an aircraft carrier. He also underscored the importance of strengthening indigenous defense and Make in India weapon systems. Vishnu P.S., Akashwani News, Delhi.
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज साहित्य महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव रविवार तक चलेगा। इसका उद्घाटन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
रायपुर साहित्य उत्सव में देश भर के जाने माने साहित्यकार, कवि, कथाकार, विचारक, कलाकार, पत्रकार, रंगकर्मी और साहित्य प्रेमी हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान साहित्यिक परिचर्चा, गोष्ठियां, कविता पाठ, कथा सत्र के साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। इस दौरान राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ओपन टैलेंट मंच और पेंटिंग कार्यशाला जैसे आयोजन भी होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
Festival of Basant Panchami or Saraswati Puja being celebrated in different parts of the country today. People, especially students, worship the goddess of wisdom and knowledge, Saraswati, on this occasion. The festival also marks the arrival of spring, a time to celebrate new beginnings and the beauty of nature. Basant Panchami is also being celebrated in Uttar Pradesh with religious fervor. A report.
आज नंदलाल में गुलाल बरसत है। 40-day long Holikotsav will start in Mathura, Vrindavan on the occasion of Basant Panchami. Devotees will play Holi with Lord Krishna in different temples. Traditional ritual of Tilkotsav of Baba Vishwanath will also take place today in Varanasi. Lakhs of devotees thronged Sangam, a confluence of Ganga, Yamuna and the mythical river Saraswati at Prayagraj from early morning to take a holy dip on the occasion of Basant Panchami, which is an important snan of Magh Mela. The day is also celebrated as Saraswati Puja, and the goddess of wisdom and knowledge Saraswati will be worshipped in schools and colleges across the state today. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
The famous ski resort of Gulmarg and a few other areas in Kashmir Valley received fresh snowfall with high-speed winds sweeping Srinagar and other plains. Fresh snowfall started in Gulmarg in Baramulla district yesterday evening as a strong western disturbance made an impact in Jammu and Kashmir. While a couple of inches of fresh snow has accumulated in Gulmarg, moderate snowfall was going on when last reports came in.
कार्यक्रम के अगले भाग में अब महानगरों के से जुड़ी खबरें जानते हैं नीना से.
सो लेट्स मूव टू चेन्नई फर्स्ट.
जी.
फाइव पनिया ट्राइबल वुमेन फ्रॉम निलगिरीज ड्रेस्ड इन देयर ट्रेडिशनल अटायर विजिटेड द सेक्रेटेरिएट टू वॉच प्रोसीडिंग्स ऑफ द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी. दे हेल्ड फ्रॉम द रिमोट कोंडोन कोल्लई ट्राइबल हैमलेट ऑफ द गुडलूर कंस्टिट्युएंसी. The extension services of the mass rapid train system station between Velachery and St. Thomas Mount will be opened in February. After nearly two decades, the extension services will cover about 5 kilometers and includes three stations, namely Adambakkam, Puruthivakkam and St. Thomas Mount. The 4.5 kilometer extension project connecting Velachery with St. Thomas Mount is now awaiting the mandatory trial run and safety clearance from the Commissioner of Railway Safety, Southern Circle. News from Bengaluru. Speaking at the inaugural of All India Open University's Vice Chancellor's Conference in Bengaluru yesterday, Karnataka Governor Thavarchand Gehlot observed that a developed India is built on skills, innovation and entrepreneurship. He noted that distance education must build a strong bridge from learning to earning. Skill-based programs, industry-linked certification, micro-credentials, apprenticeships and academic credit banks enhance employability among youth and strengthen the foundation of a self-reliant India. He said a developed India by 2047 can be achieved by economic growth, social inclusion, knowledge-based development and human values. And now moving on to Hyderabad. The Telangana state government has signed multiple memoranda of understanding MOUs and secured investment commitments worth nearly 30,000 crore rupees at the World Economic Forum 2026 in Davos. The state signed a major MOU with a prominent Indian industrial conglomerate, Rashmi Group, involving an investment of 12,500 crore rupees to set up a steel production unit in Telangana. An official release state that project has the potential to create around 12,000 direct and indirect jobs and significantly strengthen the state's manufacturing ecosystem. The state also entered into an MOU with a California-based company specializing in energy-efficient AI hardware and full-stack software solutions, Blaze, focusing on scaling its existing research and development center in Hyderabad. Another MOU signed with Dubai Multi-Commodity Center to explore cooperation for startup development, cross-market exposure and ecosystem building. US-based Sargad also signed an MOU with the Telangana government to invest up to 1,000 crore rupees over the next 3 to 5 years in advanced manufacturing and industrial ecosystems. And Mukesh, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Ji Nina, Delhi se shuruaat karte hain. दिल्ली में यातायात पुलिस ने राजधानी में आज होने वाले गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए यातायात परामर्श जारी किया है. यातायात पुलिस के अनुसार फुल ड्रेस रिहर्सल आज सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोल चक्कर वाली प्रतिमा, तिलक मार्ग बहादुर शाह जफर से होते हुए लाल किले पर संपन्न होगी। यातायात पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली आने से बचें और इसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजनाएं बनाएं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना मरम्मत कार्य के कारण कल कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने कहा कि राजधानी के अर्जुन पार्क, इंद्र पार्क, नंगली सकरावती, प्रेम विहार, निरंजन पार्क, नंगली विहार सहित अन्य इलाके इसमें शामिल हैं। जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पानी इकट्ठा करके रखें। पानी के टैंकर टेलीफोन नंबर 1916 पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति में अस्थायी रुकावट के कारण राजधानी के इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहने का अनुमान है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि यह समस्या अगले महीने की 4 तारीख तक बनी रह सकती है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल आजादपुर मेट्रो स्टेशन परिसर में आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में 8 नए आधार सेवा केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5 केंद्रों का उद्घाटन एक साथ किया गया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन केंद्रों से राजधानी में आधार सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी। अब बात करते हैं मुंबई के समाचारों का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटारे के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान के परिणाम दिखने लगे हैं। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निदेशालय के पास 1,81,000 लंबित मामले थे, जबकि वर्ष 2025 में 2,94,000 नए मामले प्राप्त हुए। निदेशालय ने दिसंबर 2025 तक 3,96,879 मामलों का निपटारा किया। इससे लंबित मामलों की संख्या घटकर 79,542 रह गई है। और बृहन्मुंबई नगर निगम MCGM ने 106 निर्माण स्थलों को काम रोकने के नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि इन परियोजना स्थलों पर वायु की गुणवत्ता वाले सेंसर नहीं लगाए गए थे। इनमें निजी भवन निर्माण परियोजनाएं, रेलवे पुल निर्माण, SRA परियोजनाएं और MHDA आवास परियोजनाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं कोलकाता से जुड़े समाचारों की। तो कोलकाता में भी आज बसंत पंचमी की धूम देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन बच्चों के लिए पारंपरिक हाटे खोरी समारोह आयोजित होगा। माना जाता है कि ये शिक्षा में उनके आगमन का प्रतीक है। बसंत की खास पहचान के रूप में आज की रौनक बढ़ाने के लिए आसमान रंग बिरंगी पतंगों से जगमगाएगा। और अब कार्यक्रम के अगले भाग में बात चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के मौसम की।
Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 15 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have forecast mist. The temperature will hover between minimum of 15 degrees and maximum of 28 degrees Celsius.
जी, ये तो बात हुई चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम की। अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम के हाल को। इधर राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। राजधानी में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उधर मुंबई में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और बात करें अगर कोलकाता की, तो कोलकाता में आज सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने और बाद में आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। श्रोताओं, अब नजर डालते हैं आज के दिन के इतिहास पर।
In 1846, Tunisia became the first Arab nation to outlaw slavery through a decree issued by Ahmed I Bey. 1855, the first bridge over the Mississippi River in present-day Minneapolis, Minnesota, was opened. It later came to be known as the Father Louis Hennepin Bridge. 1909, the first radio rescue at sea was carried out using the CQD distress code by the British Royal Mail Steamship Republic of Nantucket Island. In 1945, during the Second World War, Karl Dönitz launched Operation Hannibal to evacuate German soldiers and civilians from Prussia by sea. In 1957, Indian nationalist V.K. Krishna Menon began the longest speech ever delivered at the United Nations defending India's stand on Kashmir, which lasted over 8 hours across 2 days.
इसके 20 बरस बाद यानी वर्ष 1977 में आज के दिन जनता पार्टी का गठन हुआ.
In 1978, Sweden became the first country in the world to ban aerosol sprays due to their harmful effects on Earth's ozone layer.
1991 में इराक के तेल मंत्रालय ने गैसोलीन की बिक्री पर रोक लगाई और वर्ष 1993 में इराक ने अमरीकी लड़ाकू विमानों पर विमान भेदी तोपों से हमले करने का आरोप गलत बताते हुए युद्ध विराम का पालन न करने की घोषणा की. और बात करें अगर वर्ष 2008 की तो 2008 में खाड़ी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहरीन में अपना पूर्ण परिचालन शुरू करने की योजना बनाई और 2008 में ही ईरान के खिलाफ तीसरा प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विश्व की महाशक्तियों के बीच सहमति बनी. अब कार्यक्रम में बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है.
Richard Berry Jr. was an African-American singer, songwriter and musician who performed with many Los Angeles close harmony groups in 1950s, including the Flairs and the Robins. He is best known as the composer and original performer of the rock stand Louie Louie. The song became a hit for the Kingsmen and it is one of the most recorded songs of all times. Here's Richard Berry with Louie Louie.
श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक नरेंद्र मोहन सेन की. बचपन में इन्हें विख्यात क्रांतिकारी अनुशीलनशील समिति के नेता पुलिन बिहारी दास के घर पढ़ने का अवसर मिला और यहीं से उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागी. ढाका मेडिकल स्कूल में दूसरे बरस की पढ़ाई छोड़कर नरेंद्र अनुशीलन समिति में शामिल हो गए. अपने साहसपूर्ण व्यवहार और कठिनतम कार्यों में आगे रहने से नरेंद्र मोहन सेन को समिति में प्रमुखता मिली और उनका घर क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया. वर्ष 1909 में अंग्रेज सरकार द्वारा समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई. समिति के सदस्यों पर ढाका षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया. अनेक लोगों को सजाएं हुई. इसमें नरेंद्र मोहन सेन पुलिस के हाथ नहीं आए और वे गुप्त रूप से समिति की गतिविधियां संचालित करते रहे. नरेंद्र मोहन सेन ने समिति के काम को आगे बढ़ाया और समिति की शाखाएं असम, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक खोली. इन्होंने वर्ष 1911 में क्रांतिकारियों को रूस, जर्मनी और अन्य देशों में भेजने की भी योजना बनाई. कृषि फॉर्म खोलकर उसके अंदर कार्यकर्ताओं को इन्होंने हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया. वर्ष 1913 में बारसीलाल षड्यंत्र केस में नरेंद्र मोहन सेन को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन पुलिस उन्हें सजा नहीं दिला पाई. इस पर 1914 में उन्हें नजरबंद कर दिया गया. उसके बाद गिरफ्तारी और भारत तथा बर्मा की जेलों में बंद रहने का उनका ये क्रम जारी रहा.
Thomas Andrew Dorsey was an American musician. Dorsey was known as the father of gospel music and was at one time so closely associated with the field that songs written in the new style were sometimes known as Dorsey's. Dorsey was the music director at Pilgrim Baptist Church in Chicago, Illinois, from 1932 until the late 1970s. Dorsey's best known composition, Take My Hand, Precious Lord, was performed by Mahalia Jackson and was a favorite of Reverend Martin Luther King Jr. Here's Precious Lord, written by Dorsey.
Precious Lord, take my
आज पुण्यतिथि है भारतीय समाज सेवी गांधी जी के विचारों के अनुयायी और लेखक अमीय कुमार दास की। असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए। वे संविधान सभा के भी सदस्य थे। वर्ष 1949 में उन्होंने जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अमीय कुमार दास अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का असमिया भाषा में अनुवाद किया। गांधी जी से संबंधित कुछ अन्य ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की। वर्ष 1963 में भारत सरकार ने उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया।
Today is the birthday of Ramesh Sippy. He is an Indian film director, actor and producer in Hindi cinema. He is particularly known for being the director of Sholay, regarded as one of the most influential films ever made in India. The government of India honored him with Padma Shri in 2013. In 2017, he founded the Ramesh Sippy Academy of Cinema and Entertainment in Mumbai. Some of his super hit movies were Sita Aur Geeta, Sagar, Shaan, and the list goes on. Let's dive into the refreshing songs from the movies produced by the legend.
हवा के साथ साथ
अरे रे रे
घटा के संग संग
संभलना
हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल
मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल
आज जयंती है मातृभूमि पर मरमिटने वाले एक और भारतीय क्रांतिकारी वीर सुरेंद्र साई की। वे 16वीं शताब्दी में चौहान वंश के संबलपुर के महाराजा मधुकर साई के वंशज थे। वीर सुरेंद्र साई ने वर्ष 1857 के विद्रोह से पहले ही विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी और विद्रोह के थम जाने के बाद भी उन्होंने इसे जारी रखा। उन्होंने संबलपुर में लगभग 1500 सैनिकों की एक लड़ाकू सेना तैयार की। उन्होंने 1857 से 1862 तक अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन उन्हें वे रोक नहीं पाए। सन 1837 में वीर सुरेंद्र साई, उदंतर साय, बलराम सिंह तथा लखनपुर के जमींदार बलभद्र देव ने मिलकर डेबरीगढ़ में कुछ विचार विमर्श किया। इस दौरान अंग्रेजों ने वहां पर अचानक धावा बोल दिया। उन्होंने बलभद्र देव की वहीं निर्ममता से हत्या कर दी, पर शेष तीनों लोग बचने में सफल हो गए। इस हमले के बाद भी इनकी गतिविधियां चलती रही, अंग्रेज भी इनके पीछे लगे रहे। उन्होंने कुछ जासूस भी इनको पकड़ने के लिए लगा रखे थे। ऐसे ही देशद्रोहियों की सूचना पर 1840 में वीर सुरेंद्र साई, उदंत साय तथा बलराम सिंह अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए। तीनों को आजन्म कारावास का दंड देकर हजारीबाग की जेल में डाल दिया गया।
तेरी शान तुझको दिल कुर्बान तू ही मेरी
श्रोताओं, आज सवेरे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही अनुमति दीजिए मुकेश और रीना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
Stay tuned for coming up next is समाचार प्रभात, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
नमस्कार।
नमस्कार।